आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, मैं हूँ नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। क्या आपने कभी सैंडविच जनरेशन के बारे में सुना है? ये वो पीढ़ी है जो एक साथ दोहरी जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई है। एक तरफ बुजुर्ग माता पिता की देखभाल और दूसरी तरफ बच्चों का पालन पोषण। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी स्थिति में रहने वाले सैकड़ों लोग इस श्रेणी में आते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन सीनियर संस्था ने सैंडविच जनरेशन रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें ऐसे लोगों की चुनौतियों को उजागर किया गया है जो दो पीढ़ियों के देखभाल कर रहे हैं। ये रिपोर्ट 4,500 से अधिक ऑस्ट्रेलियनों पर आधारित है और दिखाती है कि दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ उनके शारीरिक, मानसिक और आस्थिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहा है। अध्ययन में पाया गया है कि सैंडविच जनरेशन के लोग हर हफ्ते औसतन 30 घंटे बुजुर्ग माता पिता और बच्चों की देखभाल में बिताते हैं, जिससे उनके पास खुद के लिए बहुत कम समय बचता है। अधिकतर लोग या तो अभी अपने माता पिता या सास ससुर की देखभाल कर रहे हैं या भविष्य में ऐसा करने की योजना में हैं। साथ ही वे युवा पीढ़ी को आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इन जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा महिलाओं पर ही आता है। इस अंश में हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक महिला से जो इस स्थिति से गुजर चुकी हैं और एक साथ आज भी दो पीढ़ियों की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। जुड़ते हैं मेलबर्न की रहने वाली निशा बजाज से और जानते हैं उनकी स्थिति और उनके अनुभव के बारे में।
थैंक यू नताशा मुझे इनवाइट करने के लिए।
सबसे पहले हमें ये बताएं निशा, आप अपने आप को सैंडविच जनरेशन का हिस्सा क्यों मानती हैं?
मैं खुद को सैंडविच जनरेशन का हिस्सा इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं दोनों अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों की जिम्मेदारियां अभी भी निभा रही हूँ। मेरी माँ जो मेरे पापा के गुजरने के बाद पिछले 23 साल से मेरे साथ ही रह रही हैं और मेरे दो बड़े बच्चे हैं जो अभी भी लाइफ में अपनी जगह बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोलूंगी कि मैं उस खुशनसीब जनरेशन की हूँ जिसमें हम अभी भी दोनों जनरेशन एक परिवार के साथ रहते हैं
जी, और एक छत के नीचे रहते हैं।
एक छत के नीचे रहते
जी,
हैं
जी। निशा, परिवार की देखभाल करने की जो कमिटमेंट है वो सराहनीय है, लेकिन इसमें बहुत सी कठिनाइयां भी आती हैं, तो हमें ये समझाएं और ये अपना अनुभव भी हमें बताएं कि आपका अनुभव क्या था, क्या रहा?
देखिए, जो भी खुद पेरेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि परिवार को अच्छी तरह से संभालना आसान नहीं है और बैलेंस करते करते अपना खुद का बैलेंस कभी कभी खराब हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है इमोशनल एंड फिजिकल थकान। आप खुद भी जब उस उम्र में होते हो जब आपके बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं और आज के टाइम पे नौकरी है, बिजनेसेस हैं, सोशल लाइफ है, इट ऑल टेक्स टोल ऑन योर हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। हमारे साथ भी यही हुआ, शुरू में बहुत मुश्किल था, स्पेशली जब पेरेंट नए नए आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, उनमें खुद में इनसिक्योरिटीज होते हैं। इन माय केस जैसे मम्मी आई तो बेटी के घर में रहना नहीं रहते हैं ये भी विचार थे, यू नो, हम भी उस कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, कभी इमोशनल उस हालात से निकल रहे थे कि बहुत मुश्किल था। अगेन, देर इज नो मैनुअल विच कैन गाइड यू, राइट? ऐसे सपोर्ट भी नहीं होती है कि आप अपने घर की बात बाहर जाके करते हैं कि मैं क्या करूं, और यू नो, इस तरह की सपोर्ट भी नहीं थी। मैं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। ये वहां पर फिर सिर्फ अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के आप सोचते हो कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या एक्सपेक्ट एज अ, अगर मैं माँ की जगह हूँ तो क्या सोचूंगी, या पति की जगह हूँ या बच्चों की जगह, तो आप एंड में बस यही सोचते हो कि व्हाट डू वी ऑल वांट, यू नो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, काइंडनेस, नर्चरिंग। और आप अपनी बस फैमिली को, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि आई एक्टेड लाइक अ कोच, सो हैड टू क्रिएट सम बाउंड्रीज कि किसी को कोई समस्या है, शुरू की बात कर रही हूँ मैं, कि किसी को कोई समस्या है तो پلیز میرے سے بات کریں, تو کمرے میں بند نہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ود میوچل ریسپیکٹ, پھر دوسرے کو جا کے سمجھانا کہ لک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اف یو ور ان دس شوز وٹ وڈ یو ایکسپیکٹ. سب کو اپنا اپنا وقت دینا شروع میں تو لگتا ہے مشکل, نو میٹر ہاؤ گڈ یو آر ود پیپل اینڈ ہاؤ گڈ یو آر ود فیملی, لیکن صرف باؤنڈریز, ریسپیکٹ اینڈ ورکنگ, ورک لائک اے ٹیم اینڈ یونائٹ اے فیملی, ناٹ ایز اے ریسپانسبلٹی کہ پیرنٹس یا بچے جو ہیں وہ کوئی آپ کی ذمہ داری ہے, جبکہ آپ اس کو امپاور کر کے اس کو ایز اے یونٹ, ایز اے فیملی بنا کے چلتے ہیں تو دھیرے دھیرے آسان ہونے لگتا ہے.
اچھا, آپ مجھے کووڈ کے سمے جو آپ نے انوبھو کیا اس کے بارے میں بتا رہی تھیں, یہاں کتنا چیلنجنگ رہا اس ٹائم پہ دونوں جنریشنز کے ساتھ رہنا, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں کہ کیا ہوا تب کووڈ کے دوران.
ہاں, تو وہ بہت مشکل سچویشن تھی کیونکہ بچے خود ایموشنل یو نو ٹراما سے نکل رہے تھے اس ٹائم, یو نو اڈلٹ کڈز, اٹس ناٹ ایزی فار دیم, پیرنٹ بےچارا اکیلے گھر میں, یو نو ان کے لیے بھی آسان نہیں. تو پریشانی یہ ہوئی کہ بچے دے وانٹیڈ سم اسپیس, اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ, ہم بھی اسی عمر سے گزرے ہیں جہاں پہ ان کو اسپیس چاہیے. اب ہم لوگ سیکھ چکے ہیں کیسے ماں باپ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یا بچوں کے ساتھ, لیکن وہ شاید انڈرسٹینڈنگ ہمارے پیرنٹس میں نہیں ہے اتنا کہ تھوڑا سا پرائیویسی یا تھوڑا سا اسپیس. تو بےچارے جب بچے نیچے آئے تو ممی بھی بےچارے آئیں کہ بھائی میں اپنے بچوں سے باتیں کروں, اور وہ تھوڑا سا فکشن گھر میں شروع ہوا جہاں بچے 5-6 بجے تک نیچے نہیں اترتے تھے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے, تو دے ول کال می, میں اس ٹائم کام کر رہی تھی بیکاز آئی ایم فرام اسینشل سروسز, کہ مما کین وی ہیو لٹل بٹ آف اسپیس. تو ممی سے بات کی تو مما کو برا لگ گیا, بچوں سے بات کی بچوں کو برا لگا کہ مما یو نو نہیں سمجھ رہی ہیں وہاں ممی کو کہ میری بیٹی مجھے ایسے کیسے بولا, اور وہ پہلی بار تھا جہاں مجھے اپنی ممی کو بٹھا کے تھوڑا سا سمجھانا پڑا کہ مما دس از مائی لائف, رائٹ, دیٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ ان اسپیس از امپورٹینٹ, کیونکہ وہ ہمارے کو نہیں ملی کبھی اسپیس, اور نہ اب وہ عمر میں آ چکے ہیں ہمیں اسپیس چاہیے بھی نہیں. لیکن بچوں کے لیے یس آئی ہیڈ ٹو اسٹینڈ اپ, اور اچھا ہوا کہ وہ بات کی کیونکہ تب سے ہمارے پریوار میں کم سے کم یہ انڈرسٹینڈنگ آئی کہ بچے اگر جب اسپیس چاہتے ہیں گیو دیم سم اسپیس. ممی کو شروع میں برا لگا, بعد میں اٹ آل وینٹ ویری ویل اور یہ پرابلم سالو ہوئی, لیکن وہ تھوڑا مشکل تھا اپنی ممی سے ایسے بات کرنا اور ان کا دل توڑنا, کیونکہ امیدیں ہوتی ہیں گرینڈ پیرنٹس کی, یو نو
جی,
تو وہ بچے نہیں سمجھ سکتے, ہم سمجھ سکتے ہیں.
ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں, تو اس استھتی میں کٹھنائیاں تو بہت ہیں, بہت سے چیلنجز ہیں, لیکن اچھی باتیں کون سی ہیں, کیا اس میں کیا آپ کو سلور لائننگ کیا نظر آتی ہے؟
دیکھیے, کاؤنٹ لیس بینیفٹس, کاؤنٹ لیس بلیسنگس. یہ شروع میں شاید جب آپ نہ سمجھ ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتی ہے, لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ جو میرے دونوں بچے ہیں بھگوان کی کرپا سے, میں بولوں گی کہ جو وہ مجھے نہ بول سکتے ہیں وہ نانی کو نہ نہیں بولتے, ان کو پتا ہے کہ یہ ہماری گھر میں سب سے بڑی ہیں. جو نرچرنگ میں اپنے بچوں میں دیکھتی ہوں, مجھے ہر جگہ نہیں دکھتی ہے وہ
جی,
اور وہ ایز این انڈیویژل کیئر کرنا جانتے ہیں کہ بڑوں سے کیسے کیئر کرتے, کام چھوڑ کے بھی اگر نانی بولتی ہے مجھے کہیں جانا ہے, دے ول گو, دے ول سے نو ٹو می, اور مے بی بعد میں میرے کو ونچ کر لیں گے تھوڑا سا, لیکن نہ نہیں بولتے, کیسے کمپرومائز ہوتا ہے, کیسے سیکریفائز ہوتا ہے, جو کہ ہم ایک جوائنٹ فیملی میں سیکھتے ہیں وہ نیوکلیئر فیملیز میں نہیں سیکھ پاتے ہیں. اور ایز اے ڈاٹر اور ایز اے میں اپنے ہسبینڈ کے بہاف بھی یہی بولوں گی کہ جہاں جن گھر میں پیرنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ بھگوان کی دین ہوتی ہے کہ دیر از سم ون ہو کیئرز فار یو اینڈ انکنڈیشنل لو لو یو اینڈ یو نو دیٹ سپورٹ از دیئر. تو آئی مین ایز اے سیڈ دیر آر اینڈ لیس کاؤنٹ لیس بینیفٹس.
آپ کا کیا ماننا ہے کہ کیا پریوار میں دیکھ بھال کا ادھک بوجھ مہیلائیں اٹھاتی ہیں؟ آپ کا انوبھو کیا کہتا ہے؟
دیکھیں, میں نے اپنی لائف میں بہت انڈیپینڈنٹ ویمن دیکھی ہیں, لیکن جتنی مرضی آپ انڈیپینڈنٹ ہو کہیں نہ کہیں وہ ایکسپیکٹیشنز رہتی ہیں. جیسے میرے گھر میں ماحول ہے جہاں ہم ہر ذمہ داری 50-50 شیئر کرتے ہیں
جی,
لیکن کہیں نہ کہیں وہ چاہے بچے ہوں یا باہر فرینڈز ہیں یا سوشل سرکل ہے, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا وائف ہے تو وہی چائے بنائے گی, وہی سرو کرے گی, اسی کی رسپانسبلٹی ہے بچے سنبھالنا. اینڈ کہیں نہ کہیں مے بی وی آر بیٹر ٹرینڈ, آئی وڈ سے وی نرچر ویل, وی آر ڈیزائن دیٹ وے کہ ہم کوئی ہم سے ایکسپیکٹ کرے نہ کرے ہم کرتے ہیں زیادہ. ये मैं जरूर फील करती हूँ बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन की यस इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड. हर कोई आपको देखता है उस नजर से कि आप उठिए और आप काम करिए ये सब चीजें. लेकिन मेरे घर में नहीं है ऐसा. आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पीपल बट आई सी दैट एवरीवेयर.
आप पिछले 23 सालों से अपनी माँ और बच्चों के साथ इकट्ठे एक छत के नीचे रह रही हैं और जाहिर सी बात है आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा कि स्थिति को किस तरह से हैंडल करना है और कैसे एक परिवार को खुशहाल रखना है. आप क्या सीख दे सकती हैं और आपके अनुसार आपका मंत्र क्या रहा?
देखिए जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है अपनी गलतियों से वो ये है कि आप अपने जैसे बड़ों से ओपनली नहीं बात करते हो. बच्चों से सोचते हो वो छोटे हैं. पार्टनर्स से आप हर चीज में भी शेयर नहीं कर पाते हो. वो सबसे बड़ी गलती है. जिस चीज से मेरी लाइफ इम्प्रूव हुई है वो हुई है ओपन कम्युनिकेशन.
राइट
कि अगर आप कोई आपको हेल्प चाहिए तो मांगो. अगर आपको कुछ मुश्किल लग रहा है तो ट्राई टू रिजॉल्व इट एंड ट्राई टू से हाउ यू फील. हम लोग अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं है. अगर आप खुद स्टेबल नहीं हैं तो आप दूसरे को सपोर्ट नहीं दे सकते हैं. तो जहां आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पीक अप.
और फाइनेंशियल प्रेशर, किस प्रकार का फाइनेंशियल प्रेशर?
बहुत मुश्किल थे पहले. जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, पेरेंट्स की भी नीड होती है. आप यू वांट टू इंश्योर कि आप सबकी नीड पूरी करें. कि अगर इंडिया के ट्रिप्स हैं या घूमने जाना है या बच्चों की रिक्वायरमेंट्स है, इट्स नॉट इजी. इट्स रियली फाइनेंशियली टोलिंग. और आप बीच में सिर्फ चुप रह के आप अपने परिवार की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना चाहते हैं. टू एन एक्सटेंट दिस इज द बेस्ट व्हाट वन कैन डू. अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगेन ओपन कम्युनिकेशन. और घर में अगर आपके 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, आसान नहीं है आज के टाइम पे परिवार चलाना. तो हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सेट गोल्स कि ये हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वी शुड डू, कैन वी अफोर्ड दिस. तो ओपन कम्युनिकेशन नंबर वन की.
क्योंकि कितनी चीजें आप सैक्रिफाइस करते हैं एक साथ रहने के लिए.
लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. यस, बहुत गिव अप करते हो आप. अपनी प्राइवेसी है, आपकी अपनी फैमिली नीड्स हैं. हम आप एज अ हस्बैंड वाइफ आप ऑफकोर्स अपने बच्चों के साथ भी सामने भी नहीं कोई परेशानी दिखाना चाहते हो, तो पेरेंट्स के साथ भी नहीं. तो हमने बहुत साल अपनी परेशानियां घर से बाहर निकल के डिस्कस किए. वी यूज टू वेट कि उस दिन बाहर निकलेंगे तब बात करेंगे इस टॉपिक पे. तो आप अंदर घुटते हो, परेशानियां होती हैं इमोशनली, लेकिन सबको बैलेंस रखते रहते हैं. जैसे मैंने आपको बोला, खुद का बैलेंस कभी कभी खोना पड़ता है.
अच्छा, किस प्रकार की मदद आपको लगता है जो होनी चाहिए, जो इस समूह को सपोर्ट कर सकती है?
अगर थोड़ी हेल्प मिले, जैसे पेरेंट्स के लिए, सपोज कि कोई जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनको फिजिकल असिस्टेंस की कोई आए, थोड़ा बेड बनाया, थोड़ा क्लीनिंग किया, थोड़ा बाहर ले गए, उनको सपोर्ट मिले. हमें थोड़ा काउंसलिंग, यस. फाइनेंशियल असिस्टेंस इज द बिगेस्ट असिस्टेंस. कि अगर आपके पास वक्त है तो आप थोड़ा वक्त और दे सकते हो अपने परिवार को. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल होम केयर सर्विसेज, जहाँ पे पेरेंट्स को सपोर्ट हेल्प मिल सके. दूसरा मुझे लगता है कि उनके मान सम्मान के लिए अगर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है तो वो ये नहीं फील करते कि वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है.
जी
ठीक है. तो ये दो चीजें तो मुझे लगता है कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पेरेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो खुश हैं तो समझ लो हमारी परेशानियां आ दी हैं.
जी.
दूसरा रिस्पाइट केयर फैसिलिटीज, मतलब आज के टाइम पे जो अपने इंडियंस के लिए होम केयर सर्विसेज नहीं है जहाँ पे उनकी भाषा में कोई बात कर सके, उनको इंडियन वेजिटेरियन फूड मिल रहा है. तो हमारे पेरेंट्स के लिए रिटायरमेंट विलेजेस वगैरह ऐसा नहीं है कुछ.
जी, एज केयर होम नहीं है, जो
केयर होम्स नहीं है.
जी. तो अगर इस प्रकार के कोई कदम सरकार उठाती है तो उससे आपको लगता है कि थोड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है?
बिल्कुल. आई मीन अगर आप सोचें कि अगर फ्यूचर की आप प्लानिंग कैसे करेंगे, अगर वो फैसिलिटीज नहीं है और आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप कहाँ, आप खुद भी उम्र के हो रहे हो, आपके पेरेंट्स भी अगर गॉड फॉरबिड फिजिकली नहीं अपने आप को सपोर्ट कर सकते तो इट विल बी डिफिकल्ट.
बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इस अनुभव को हमारे साथ साझा करने के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।